वीर दमन करेंगे और श्रीपाल जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक यहां से बाहर चले जाएंगे। वैसे ही वह माता कुंदप्रभा को बहुत दुख हुआ कि मेरा प्रिय पुत्र, जिसको बचपन से कभी मैंने अपनी आंखों से अलग नहीं किया, सिर्फ गुरु के पास विद्या अध्ययन करने के लिए गया था तब मेरी आंखों से दूर था, अब मैं कैसे उसका वियोग सहन करूंगी। लेकिन श्रीपाल ने बड़े मधुर वचनों में माता को समझा दिया और माता ने अंत में आशीर्वाद दिया कि बेटे जल्दी ठीक हो जाना और जल्दी आ जाना। तब श्रीपाल बोलते हैं कि माता, जब आपने आशीर्वाद दिया है जल्दी ठीक हो जाना, तो मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, आऊंगा, आपसे जरूर मिलूंगा। ऐसे कुछ बातें करके, मतलब जो विदाई के समय होती है चर्चाएं, उस प्रकार की चर्चाएं करके श्रीपाल वहां से निकल गए। और वो दुर्गंध इतनी प्रचंड थी उनके शरीर की कि अगर उनके कक्ष में कोई पक्षी आ जाए तो उसका प्राणांत हो जाए। इतनी भयंकर स्थिति बन गई थी शरीर की और कोई पहचान नहीं सकता था। वो तो आवाज से मां को पता चलता था कि ये मेरा बेटा है श्रीपाल, तो चेहरे से तो कभी पहचान में आना ही नहीं था। अब ऐसी स्थिति में श्रीपाल ने चंपापुरी का राज्य अपने चाचा को सौंप कर प्रजा के हित में वहां से प्रस्थान कर दिया और कभी उपवनों में ठहर जाते थे, कभी उद्यानों में ठहर जाते थे और वहां ठहर कर उनके साथ साथ वो 700 वीर भी चलते थे। अब उनमें कोई छत्र पकड़ करके रहता था, कोई चंवर आसपास ढुराते थे, तो सब सेवा तो पूरी बराबर होती थी, सारा वैभव भी था, लेकिन बस शरीर की स्थिति ऐसी थी कि उस सारे ठाट को देख करके भी कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि ये इतना बड़ा वैभवशाली कोई चंपापुरी का राजा रहा होगा। तो इस प्रकार श्रीपाल अपने साथियों के साथ बहुत समय तक बगीचों में ठहरते रहे और उनका समय उस प्रकार व्यतीत होता रहा। कभी वो गुरु के वचनों का स्मरण करके कर्म के उदय को जानते हुए शांति धारण करते थे, कभी कभी वेदना हो जाती थी तो फिर उनके जो वैद्य लोग थे वो उस पर कुछ उपचार करने का प्रयास करते थे, लेकिन सब व्यर्थ। कोई औषध श्रीपाल के रोग को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो पा रही थी। लाख प्रयास करने पर भी श्रीपाल का कोढ़ दूर होता नहीं था। और जब तक यहां पर यह घटना हो रही थी तब तक एक मालव देश है, उस मालव देश की नगरी उज्जैनी, वहां पर एक प्रजापाल नाम के बहुत पराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनकी रानी निपुण सुंदरी थी और निपुण सुंदरी की दो कन्याएं थी और दो कन्याओं में से एक का नाम था सुर सुंदरी और दूसरी का नाम था मदन सुंदरी, जिसका बोलचाल में जो नाम था प्रेम से मैना सुंदरी बोलते थे उसको। अब जैसे रत्न को रैन बोलते हैं प्राकृत में, मदन सुंदरी वैसे नाम था तो मैन सुंदरी मैना सुंदरी ऐसा शब्द बन गया था। एक दोहा आपने सुना होगा, जांचे सुर तरु देय सुख चिंतत चिंता रैन। ये रैन क्या चीज है? रैन का मतलब होता है रत्न, तो रत्न का अपभ्रंश में भाषा में परिवर्तन होकर के रैन बन गया, वैसे मदन का मैन बन गया और फिर वो स्त्रीलिंग होने के कारण मैना ऐसा नाम हो गया, मैना सुंदरी नाम। तो छोटी का नाम मैना सुंदरी, बड़ी का सुर सुंदरी। जब ये दोनों राजकुमारियां पढ़ने योग्य हो गई तब इनको भी विद्या पढ़ने के लिए जो इनको इष्ट था उनके पास भेजा। तो सुर सुंदरी ने किसी गुरु के पास पढ़ना पसंद किया, राजा ने स्वीकृति दे दी। मैना सुंदरी ने एक साध्वी के पास, आर्यिका के पास पढ़ना पसंद किया तो उनको वहां पढ़ने के लिए रख दिया। और जब दोनों पढ़ लिख करके बुद्धिमती हो गई, विदुषी हो गई, तब सब विद्याओं में पारंगत होने के पश्चात वापस अपने पिता के यहां आई। और पिता के यहां आने पर राजा प्रजापाल ने, जिनको पहुपाल भी बोलते ना, उन्होंने देखा कि अब मेरी पुत्रियां विवाह के योग्य हैं। बड़ी बेटी को देख करके सोचा कि इसका विवाह कर देना चाहिए, तो ऐसे ही माने गंभीरता से नहीं, चर्चा चर्चा में ही ऐसे पूछा कि बेटी सुरसुंदरी तुम कहां जाना चाहती हो। अब सुरसुंदरी ने जहां से शिक्षण प्राप्त किया था वहां की कुछ अलग मर्यादाएं थी, और मैना सुंदरी ने जहां से संस्कार प्राप्त किए थे वो कुछ अलग प्रकार के थे। तो फिर यद्यपि कन्या कभी वर की याचना अपने मुख से नहीं करती भारतीय संस्कृति में, तो भी उस सुर सुंदरी ने पिता से कहा कि मुझे कौशाम्बी के राजकुमार के घर जाने की इच्छा है। पिताजी ने बोला इतनी सी बात है, संकोच क्यों करती हो, मैं तो तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और फिर सारा बंदोबस्त हो जाता है, विवाह की तैयारियां हो जाती है, सगाई वगैरह सारी क्रियाएं निपट करके अंत में धूमधाम के साथ विवाह संपन्न हो जाता है। सुर सुंदरी हरिवाहन राजकुमार की पत्नी बन करके कौशाम्बी की तरफ प्रस्थान कर देती है। फिर अष्टानिका पर्व आता है तो उपवास करके एक दिन मैना सुंदरी भगवान के अभिषेक का गंधोदक लेकर पिता के सामने रख देती। वहां पर एक सुंदर मेज था, छोटा सा, एक उसको शब्दों में क्या बोलना, एक ऐसा ऊपर में रखने का स्थान था और नीचे उसके पाए थे। तो उस पर मैना सुंदरी वो गंधोदक का सुंदर पात्र, रत्न जड़ित स्वर्ण पात्र को रख देती है। और फिर पिता ऐसे ही उसकी विद्वत्ता की परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं कि क्या है बेटी ये। तब फिर मैना सुंदरी बोलती है कि ये भगवान के अभिषेक का अमृत जल है, ये गंधोदक है। तो बोले इससे क्या होता है, बोले कि ये पवित्र जल है, ये पुण्यवर्धक है, और जब भगवान जन्म लेते हैं तो देवता लोग उनका सुमेरु पर्वत के ऊपर जन्माभिषेक करते हैं। उस जन्माभिषेक का वर्णन करती है मैना सुंदरी, सुंदर वर्णन करती है, और कहती है कि उस समय क्षीर सागर के जल से भगवान के ऊपर देवता लोग जल धाराएं छोड़ते हैं, उनका मस्तक अभिषेक करते हैं, वो धाराएं सुमेरु पर्वत पर चारों ओर झरनों के समान बहने लग जाती है। लेकिन वहां जो असंख्यात देव विद्याधर आदि होते हैं वो उस जल को अपने मस्तकों पर धारण कर लेते हैं, अपने शरीर पर लगाते हैं, अपने अंग प्रत्यंग को उस गंधोदक के द्वारा पवित्र करते हैं। ये वो भगवान के अभिषेक का पवित्र जल गंधोदक है। तो फिर पिताजी बोलते हैं कि तूने ये कहा कि ये पुण्यवर्धक है, ये तो बता पुण्य क्या वस्तु है। पुण्य पाप की दुनिया में बहुत चर्चा चलती है, पुण्य और पाप क्या है तुझे पता है। तो वो बेटी बोलती है मैना सुंदरी कि पिताजी जो सत्कार्य किए जाते हैं उस समय अपने को जिस कर्म का बंध होता है, सत्कार्यों में एक बंधन और फिर दुष्कर्मों में भी एक बंधन होता है, तो ये दो प्रकार के बंधन होते हैं। संसार में जीव कर्मों से बंधा हुआ रहता है, कभी अच्छे कार्य करता है तो सत्कार्यों के माध्यम से, सत्कर्मों के माध्यम से उसको जिस कर्म का बंध होता है वह पुण्य बंध कहलाता है, और वह पुण्य फल देते समय उसको इष्ट सामग्री प्रदान करता है और चारों ओर मंगलमय वातावरण उत्पन्न करता है, वह पुण्य कहलाता है। और पुण्य की प्राप्ति व्रतों से, भक्ति से, दान से और अन्य इसी प्रकार की क्रियाओं से होता है, परोपकार से, करुणा से पुण्य का लाभ होता है। और पाप वो वस्तु है जो पंच पापों से, सात व्यसनों से, दुर्भावना से, आर्त रौद्र ध्यान से और क्रूरता से उपार्जित होता है। इसलिए पिताश्री मैंने तो यही सीखा है, माताजी गुरु जो अपनी अरेका माताजी थी उनने मुझे यही सिखाया कि पापों से जहां तक बने बचते रहो, तो इस पुण्यवर्धक जल को आप धारण कीजिए, मस्तक पर लगाइए। तो फिर राजा प्रजापाल बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर उस गंधोदक को अपने मस्तक पर लगाते हैं। फिर जब पर्व पूरा होता है, मैना सुंदरी के उपवास भी पूर्ण हो जाते हैं, तब पिता उस पर एक दृष्टि डालकर के मन में विचार करता है कि ये मेरी छोटी बेटी भी राजकुमारी भी विवाह के योग्य हो गई है, चलो इससे भी उसकी चर्चा कर लूं। तो फिर मैना सुंदरी को बुलाते हैं और बुला करके ऐसे देखते हैं मैना सुंदरी की तरफ। पहले मैना सुंदरी को लगता है कि पिताजी मुझे आज इस प्रकार देख रहे हैं, जरूर कोई प्रश्न पूछेंगे या कोई गंभीर बात करेंगे। तो पिताजी पूछते हैं कि बेटी तेरी बहन तो कौशाम्बी चली गई, तेरा कहां जाने का विचार है? तो मैना सुंदरी एकदम आश्चर्य में पड़ जाती है कि पिताजी मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे कहां जाने का विचार है। ऐसे धरती की तरफ दृष्टि डाल करके चुपचाप खड़ी हो जाती। राजा प्रजापाल कहते हैं कि संकोच मत कर, जो तेरी मनसा हो जो तेरी इच्छा हो मुझे बतला दे, मैं उसका ध्यान रखूंगा, तेरी कामना पूर्ण करूंगा। फिर भी मैना सुंदरी कुछ नहीं बोलती। तब पिता पुनः प्रश्न करता है कि क्यों नहीं बोल रही है, तुझे संकोच किस बात का है? तो मैना सुंदरी को लगता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। बोलती है, पिताश्री भारतीय संस्कृति में कन्या कभी अपने मुख से वर की याचना नहीं करती, यदि बड़ी बहन दीदी ने अगर ऐसा किया तो मैं कुछ नहीं जानती, मैं उसको दोष नहीं देती, लेकिन उसको वैसे संस्कार नहीं मिल पाए मैं ऐसा समझती हूं, पर मुझे मैंने जहां पर विद्या प्राप्त की है ऐसे संस्कार मिले हैं कि कन्या की मर्यादा क्या होती है, इसलिए मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। आप जैसा चाहोगे, जो आपको स्वीकार है वही मुझे इष्ट है, और मेरे भाग्य में होगा वो मुझे प्राप्त होगा। तो पिता ने बोला कि तेरे भाग्य में होगा वो तुझे प्राप्त होगा। वही उस दिन जो पुण्य की बात की थी तूने, उसी की बात कर रही है क्या? मैना सुंदरी बोलती है, जी पिताजी, सारा खेल तो संसार में पुण्य और पाप का ही है, उस पुण्य से ही मैं आज यहां तक पहुंची हूं। तो पिता बोलते हैं कि पुण्य से तू यहां तक आई है, क्या मेरा तेरे ऊपर कोई उपकार नहीं है? तू मुझे कुछ भी नहीं समझती? तो मैना सुंदरी एकदम हाथ जोड़ करके बोलती, पिताश्री मेरा ये भाव नहीं है, आप निमित्त हैं लेकिन अंतरंग में मेरे पुण्य का उदय है जिसके कारण मुझे ये सब इष्ट साधन उपलब्ध हुए हैं, आप इसका अन्यथा अर्थ मत लीजिए पिताजी, मेरा भाव आपके अविनय का अनादर का कदापि नहीं है। तो पिता बोलते हैं कि अच्छा तू पुण्य से आई है यहां, और तू जो यहां हमारे राजघरानों में पली है वो किसकी कृपा से पली है? मैना सुंदर सरल भाव से बोलती कि पुण्य से। अच्छा, तुझे जो अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, अच्छे वस्त्र पहनने मिलते हैं और सारे सुख प्राप्त होते हैं, वो कैसे होते हैं? मैना सुंदरी बोलती, पुण्य से। तो भड़क जाते हैं बिल्कुल श्री प्रजापाल राजा, एकदम आवेश में आ जाते, बोले कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि तू हमें कुछ नहीं समझती। मैना सुंदरी फिर निवेदन करती कि पिताजी आप फिर उसका अन्यथा अर्थ ले रहे हैं, वैसा मेरा भाव नहीं है। आपको मैं बता दूं, यदि मेरा पुण्य ना होता तो मैं आपकी पुत्री कैसे बनती, ये बताइए। अपने पुण्य से ही तो मैंने आपके यहां जन्म प्राप्त किया, इसलिए आपका तो उपकार भरपूर है, पर मैंने जो पिछले जन्मों में कर्म किया है उसी के फलस्वरूप आज मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। तो फिर पिताजी बोलते हैं कि तुझे जो हम स्वीकार करेंगे वही वर स्वीकार होगा। बोले निश्चित होगा, इसमें संदेह की क्या बात है। फिर मन ही मन ऐसे दांत पीसते हुए अंदर ही अंदर वो शपथ लेता है राजा प्रजापाल कि तेरे पुण्य को मैं परखूंगा, तेरे पुण्य की मैं परीक्षा लूंगा, तुझे जिस पर इतना अभिमान है मैं उसकी परीक्षा लेके रहूंगा। तब मंत्रियों ने जब राजा की मुख मुद्रा देखी तो बेटी के चले जाने के बाद राजा को समझाते हैं कि राजन बच्चों की बातों पर क्या आप इतनी दूर की सोच रहे हो, आप बिल्कुल अपने मन में से ही बात निकाल दीजिए, माता पिता संतान के लिए हितकारी होते हैं, आप कोई भी अन्यथा विचार मत कीजिएगा। और वो जैसा पढ़ करके आई है वैसी बात कर रही है, उसको पता नहीं है कि राजा के सामने क्या बोलना पड़ता है। वो तो आपको अपना पिता मान करके सरल भाव से जो भी उसने समझा है वो प्रकट कर रही है। और वैसे देखा जाए तो उसने ये भी तो स्वीकार किया कि उस पुण्य से ही, तो उस पुण्य की कृपा से ही वो आपकी पुत्री बनी है। अगर पुण्य का उदय न होता तो वो कहीं किसी दरिद्र घर में पैदा हो जाती। तो आप तो खामोखा नाराज हो रहे हैं, आप क्यों इतना रुष्ट हो रहे हैं अपनी बेटी पर? आप क्षमा करो, जाने दो और दूसरे काम पर ध्यान दीजिए, आप इस प्रकार बच्चों पर नाराज मत होइए। लेकिन राजा जो थे उनके मन में वो चीज बैठ गई थी, और फिर उन्होंने अंदर ही अंदर शपथ भी ले ली थी कि मैं तेरे पुण्य की परीक्षा लूंगा। तो एक बार वन विहार के लिए जब राजा निकले तो फिर कुछ आवाजें सुनाई पड़ी, बहुत दूर निकल गए तो किसी बगीचे से कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। और उस बगीचे में अंदर देखते हैं तो फिर बहुत सारे कोढ़ी लोग बैठे हुए हैं, और फिर एक कोढ़ी के सिर पर वो छत्र लिए हुए कोई बाजू में खड़ा हुआ है। राजा ने सोचा कि ये क्या तमाशा है, क्या विचित्र नजारा है, इन रत्नों के हार है, माथे पर मुकुट है और राजाओं जैसे वस्त्र हैं, और आसपास सारे ये सेवक लोग हैं, लेकिन विचित्र बात तो यह है कि ये सारे के सारे कोढ़ी हैं। पता नहीं राजा के मन में क्या सूझा कि उसने अपने हाथी को उसी बगीचे की तरफ मोड़ दिया, और सारे जो उनके साथ में चलने वाले सामंत लोग थे, राजा के सेवक, वो सब साथ साथ चलते हैं। फिर राजा थोड़ी देर तक हाथी पर ही बैठे बैठे वो दृश्य देखता रहता है, फिर हाथी से नीचे उतरकर बगीचे में प्रवेश करता है। जैसे ही राजा बगीचे में प्रवेश करता है तो बंदीजन लोग गीत गाते हैं कि राजा प्रजापाल पधार रहे हैं, और फिर उनके बिरद गान करते हैं। तो उसको सुनकर के श्रीपाल वहां पर, जो कोड़ियों का समूह था उसमें श्रीपाल थे बीच में, तो वो अपने सामंतों को बोलते हैं कि उठो, कोई राजा पधार रहे हैं, उनका स्वागत करो, हम भी उनसे मिलेंगे। तो बिल्कुल राजकीय विधि से दोनों का मिलन होता है, और मिलन होने पर जो वार्तालाप करता है श्रीपाल राजा प्रजापाल के साथ, तो उनके शब्दों को, उनकी वाणी को सुनकर के प्रजापाल बहुत आनंदित होता है कि ठीक है, आज ये इतना बीमार है और फिर ऐसी रुग्ण अवस्था में कोढ़ी है, लेकिन ये बहुत बड़ा विद्वान है। और फिर इसके आगे क्या होता है सो फिर आगे देखेंगे। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचतन, अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणा सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा जिन धर्म शरणा, चार शरण अग हरण जगत में, और न शरणाहितकारी जो जन ग्रहण करे वे होते। अजर अमर पद के धारी, नमस्कार श्री अरिहंतों को, नमस्कार श्री सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को। ओम शांति। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को।